तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णार्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमामि। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे श्रीविशेषपुण्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवानादि गौरनाथ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी मैंने जो श्लोक पढ़ा था, श्लोक भगवान ब्रह्मा ने स्तुति की भगवान कृष्ण की। सृष्टि की रचना भगवान कृष्ण की इच्छा से होता है और उन्हीं की इच्छा से इस संसार का पोषण और संहार भी होता है। भगवान जो है वो इसका वर्णन करते हैं स्वयं भगवद गीता में। और बताते हैं कि कैसे मैं सारे देवी देवताओं को प्रकाशित करता हूँ इस संसार के पोषण और रचना के लिए। आदि पुरुष गोविंद ब्रह्मा जी प्रार्थना में बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद जो है सारे कारणों के कारण है, बाकी सब कारण है, लेकिन गोविंद कारणों के कारण है। सर्व कारण कारणम, तो बाकी सब कारण है लेकिन कारणों के कारण है कौन? गोविंद कृष्ण। इति मत्वा भजन्ते माम, इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार जानकर। इति मत्वा, इति मतलब इस प्रकार, मत्वा मतलब समझकर जानकर, जो व्यक्ति समझता है कि गोविंद ही सारे कारणों के कारण है। इति मत्वा ऐसा जानकर भजन्ते माम है, भजन्ते माम, भजन्ते भजन करते हैं किसका? माम मेरा, गोविंद बताते हैं, कृष्ण बताते हैं। ऐसा जानकर कि मैं ही सारे कारणों का कारण हूं, लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मेरा भजन करते हैं। कौन? बुधा। बुधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। भगवान बुद्ध भी भजन करते हैं कृष्ण का ही, वो भी सही है, बुद्धा लॉर्ड बुद्धा, लेकिन बाहर से पता नहीं चलता, अंदर से वो कृष्ण का ही स्मरण करते हैं, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण ही बुद्ध के रूप में अवतार लिए हैं, दशावतार में जयदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है, श्रीमद् भागवतम वेद व्यास ने भी इसका वर्णन किया है कि कलयुग में भगवान के दो अवतार होंगे, एक बुद्ध अवतार और जो कि हो चुका है, अभी हो चुका है, और एक कल की होता। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, और जो मूढ़ा बूढ़ा और मूढ़ा मूढ़ा जो होंगे वो क्या करेंगे? बाकी नाना प्रकार के ग्रेट पर्सनालिटीज की पूजा करेंगे, अमिताभ बच्चन की पूजा करेंगे, सचिन तेंदुलकर की पूजा करेंगे, ऐश्वर्या राय की पूजा करेंगे, बिल क्लिंटन की पूजा करेंगे, महात्मा गांधी की पूजा करेंगे, और थोड़ा और ज्यादा श्रद्धा रखने वाले लोग जो हैं बाकी देवी देवताओं की भी पूजा करेंगे, लेकिन वो सब मुड़ा। देवी देवताओं की पूजा जो है वो कौन करते हैं? काम इष्ट हितस ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता। सातवें अध्याय में भगवद गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि काम ही तैस्त ही हितस ज्ञान हितम, हित मतलब अपहरण हो गया है जिसका ज्ञान, हित मतलब हर लिया गया है जिसका ज्ञान, जिसका ज्ञान का किडनैपिंग हो गया, नॉलेज किडनैपिंग। हितस ज्ञानम है तो क्या करता है व्यक्ति? प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो प्रपद्यन्ते मतलब शरण लेता है किसकी? अन्य देवताओं की, मेरी नहीं। जिसके ज्ञान का अपहरण नहीं होता वो किसका शरण लेता है? मेरा। अपहरण जिसका नहीं हुआ है किडनैपिंग वो कृष्ण की शरण लेगा, लेकिन जिसका ज्ञान का अपहरण हो गया है वो अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करता है। तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, और अपने अपने भावों के अनुसार, अपने अपने इच्छाओं के अनुसार उन अलग अलग प्रकार के देवताओं की पूजा करता है। कामई तैस्तई, और कौन हरण करता है उसके ज्ञान को? ज्ञान को किडनैप कौन करता है? काम, इच्छा, इच्छा उसके ज्ञान को भरण करता है। तो इच्छा क्या है? इच्छा है कि मेरे को बहुत पैसा चाहिए, मेरा प्रमोशन हो जाए। इन इच्छाओं के कारण व्यक्ति देवताओं के पास जाता है, पर परीक्षा में पास हो जाए तो सरस्वती जी के पास जाएंगे, है कि नहीं? और किसी को अगर सुंदर पत्नी चाहिए या पति चाहिए तो उमा और शिव जी की पूजा करेंगे। हेल्थ ठीक करना है तो सूर्य नारायण, सूर्य देव की पूजा करें। बारिश कराना है तो इंद्रदेव की पूजा करें, है कि नहीं? यस। और इस प्रकार से अगर किसी को किसी दुश्मन का नाश कराना है तो विघ्न विनाशक है कि नहीं? हमारे प्यारे विनायक, विनायक जी। और अगर भूत प्रेत को भगाना है तो हनुमान जी है, उनकी पूजा कर लेंगे, भूत पिता पिशाच निकट नहीं आवे, है कि नहीं? तो ये सब क्या है? काम, इच्छाएं हैं। क्या है? इच्छाएं, उसकी पूर्ति के लिए ये इच्छाएं हमारे ज्ञान को हरण कर लेती हैं, और फिर भगवान कृष्ण की पूजा करने के बजाय बाकी देवताओं के शरण लेता है व्यक्ति। लेकिन अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति उस देवता के पास जाता है, हैं? उस देवता के पास जाता है कुछ मांगने, तो देवता के पास शक्ति नहीं है इसको कुछ देने की। देवता के पास कैपेसिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में गए, कैशियर के पास, बैंक में गए कैशियर के पास और बोले कि मेरे को 1 करोड़ रुपया दे दो, तो कैशियर के पास क्षमता नहीं है कि 1 करोड़ तुरंत निकाल के दे दे। पैसा है उसके पास लेकिन दे नहीं सकता, करेक्ट? वो कहां जाएगा? मैनेजर के पास जाएगा। मैनेजर से पूछेगा कि व्यक्ति आया है उस पासबुक लेकर, दिया जाए कि नहीं दिया जाए, करेक्ट? तो मैनेजर सैंक्शन करेगा या मालिक सैंक्शन करेगा तब दिया जाएगा उसको। तो देवता लोग जो है सिंपली कैशियर है, वो लोग कि उनकी पास भी जो शक्ति आती है किसी को कुछ दान देने की, भगवान कृष्ण बता रहे कि ये मैं ही देता हूं उनको। उनको भी शक्ति किससे मिलती है? कृष्ण से मिलती है। मैं ही देता हूं लेकिन इस प्रकार से देता हूं कि उस व्यक्ति को लगता है कि वो देवता दे रहा है, और उसकी श्रद्धा जो उस देवता में और फिक्स कर देता हूं। बता रहे हैं आप, सुन रहे, मैं मजाक कर रहा हूं, ये सही लिखे भगवद गीता में आपको सीरीज में श्लोक है इसका, सातवें अध्याय में अगर आप जाएंगे पूरा डिटेल में इसका वर्णन किया है भगवान ने कि कैसे देवताओं के प्रति लोगों की श्रद्धा को मैं बढ़ाता हूँ। और फिर वो व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मेरे को देवता ने दे दिया है, मेरे को देवता ने दे दिया है? और फिर जो है ये 20 श्लोक है, 21 श्लोक, 19वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 19वें श्लोक में ध्यान से सुनिएगा है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये 7वें अध्याय का 19वां श्लोक कि बहुत जन्मों के बाद जो व्यक्ति ज्ञान में परिपूर्ण हो जाता है, ज्ञानवान जैसे धनवान होता है कि नहीं, धनवान मतलब जिसके पास बहुत धन हो जाता है, इसको बोलते हैं जो 5 रुपया उसको अब धनवान नहीं बोलेंगे है कि नहीं, और 4-5 लाख रुपया हो तो बोल सकते हैं धनवान है कि नहीं। तो बता रहे भगवान की बहुनाम जन्म नाम थे, बहुत जन्मों के बीतने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो जब ज्ञान में पक्का हो जाता है तो क्या करता है, माम प्रपद्यते, क्या करता है, माम मतलब मेरी शरण में आता है, प्रपद्यते मतलब शरण में आना है। और ज्ञान क्या है, वो इस बात को जान जाता है कि वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा जानकर वो क्या करता है, मेरी शरण में आता है, कृष्ण की शरण में आता है। लेकिन लेकिन बता रहे कि स महात्मा सुदुर्लभम, ऐसा महात्मा क्या है, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिलेगा, और सुदुर्लभ मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल से, बहुत रेयर, एक दुर्लभ का मतलब रेयर और सुदुर्लभ मतलब वेरी रेयर, बहुत मुश्किल से ऐसे महात्मा आपको मिलेंगे जो केवल कृष्ण की शरण में आते हैं, इस बात को समझकर कि कृष्ण ही सब कुछ हैं। अब तब तक क्या करते हैं बाकी लोग, तो दुर्लभ नहीं है, बहुत संख्या ऐसे लोगों की, तो लोग देवताओं के शरण में जाते हैं। और यहाँ भगवान बताते हैं माम प्रपद्यते मतलब मेरी शरण में आते हैं, 19वें श्लोक बताते हैं जो इस बात को जान जाते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, वो कृष्ण की शरण में आते हैं। लेकिन जो इस बात को नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं, अगले श्लोक में बता रहे हैं है? जो मैंने पढ़ा था, अगले श्लोक बता रहे काम हित ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, मेरी प्रपद्यन्ते माम प्रपद्यन्ते नहीं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिसकी अंदर भौतिक इच्छा है, धन चाहिए, सुंदरी स्त्री चाहिए, संसारिक सुख चाहिए है? जब रावण को संसारिक सुख चाहिए था तो कृष्ण के पास नहीं गया, किसके पास गया, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, क्यों, शिव जी दे देते हैं, राक्षस के जितने राक्षस हैं सब किसके भक्त हैं, शिव जी के या ब्रह्मा जी के, विष्णु के भक्त राक्षस नहीं होते आप देखिए, या कृष्णा के भक्त राक्षस नहीं होते, तो जो तो अगर आप शिव जी की पूजा कर रहे थे समझ जाइए आप, है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप राक्षस हैं, लेकिन कहते हैं कि कहने कहते हैं कि अगर जो आपको अगर कुछ पाने की इच्छा है तभी आप जाते हैं देवताओं के पास है ना, लेकिन जो अगर आपको कोई इच्छा नहीं है तो देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं, कृष्ण की पूजा कीजिए, ऐसा वर्णन आता है। और फिर जो है भगवान बताते हैं कि अपने मत के अनुसार, अपने भाव के अनुसार जो जो चीज चाहिए उसके अनुसार उस देवता की पूजा करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं, कितने, 33 करोड़ देवी देवता हैं। और प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम इसमें है कि अगर आप एक देवता की पूजा की दूसरे की नहीं किए तो गुस्सा हो जाएगा कि उसका कर दिया मेरे को नहीं किया, तो वो कृपा नहीं देगा आपको, तो फिर उसका प्रकोप हो जाएगा। और फिर इस तरह से आप हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में आता रहे, फिर आप उसको खुश करते रहिए, फिर पंडित जी के पास जाके बोलेगा अभी आपके शनि का प्रकोप हो गया है, अब शनि को आप बैलेंस करिए तब तक बृहस्पति का प्रकोप। ये राहु भी आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। तो इस तरह से क्या होता है कि आप दबाते रहेंगे, अलग अलग हर जगह अलग अलग जगहों पे समस्या आएगी, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अब मान लीजिए 33 करोड़ देवी देवता है, उधर क्यों देख रहे हैं? इधर देखिए, क्लास इधर हो रहा है, देख उधर रहे हैं, साइट सीन है क्या उधर कुछ है? इधर बैठे ही आई भाई, उधर मुंह करके बैठे। अच्छा तो इधर यहाँ बैठे तो बहुत अच्छा से देख पाएंगे, इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मुझे ही देखें, इसलिए आप आगे आ जाइए, चलिए आइए सर, बैठने का बहुत जगह। आप जो चाहते हैं मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मुझे ही देखिए, बढ़िया से देखिए, यहाँ बैठ गए ठीक है। तो जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं ये शास्त्रों में, और फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं कुछ क्या बता रहे हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। वो बता रहे हैं अगले 21वें श्लोक में बता रहे हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ परमात्मा के रूप में। देवता लोग परमात्मा नहीं है, परमात्मा कौन है? कृष्ण। कृष्ण का एक फीचर जो है, एक विस्तार करते हैं सबके हृदय में परमात्मा, बोलते कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ परमात्मा के विस्तार के रूप करके, और जैसे ही मैं देखता हूँ as soon as one desires to worship some demigod, जैसे ही कोई, जब ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तुरंत मुझे पता चल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, बोलते हैं I make his faith steady, मैं उसका श्रद्धा उसमें और बढ़ा देता हूँ उस देवता में, ताकि so that he can devote himself to that particular देवता, ताकि वो उस देवता का भक्त बन जाए। क्यों? क्योंकि भगवान को ईर्ष्या नहीं है। अरे तू उसकी क्यों कर रहे हैं, मेरी पूजा नहीं कर रहे, मैं भगवान हूँ, ऐसा नहीं है भगवान का ये भाव नहीं, मुझे उसकी पूजा करना है तो करो, नो प्रॉब्लम, मेरे को ईर्ष्या नहीं है आपसे, क्योंकि भगवान के पास किसी चीज की कमी ही नहीं है, है ना। ये तो वो व्यक्ति करेगा ना कि मेरे को वोट क्यों नहीं दे रहा है, तो उसको क्यों दे रहा है, भगवान के अंदर ये भाव नहीं है। अगर आप भगवान को बोले कि भगवान, बोलने की भी जरूरत है, बता रहे कि जैसे ही इच्छा करता है तो ही मैं उसको फुलफिल कर देता हूँ, इच्छा करेगा दूसरे तो बोले तो भगवान बोले ठीक है करो, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, उसी को वोट दो, है ना, इस तरह से। और फिर बता रहे इन डाउट विथ सच ए फेथ, उसकी श्रद्धा को जब मैं बढ़ाता हूँ तो क्या करता है, उस देवता की वो पूजा करता है और अपनी इच्छा को प्राप्त करता है, उस देवता से अपनी इच्छा प्राप्त करता है। लभते च ततः कामान मयि एव विहितान हितान, उसकी जो लभते च ततः कामान, जो इच्छा उसको प्राप्त होती है, इच्छाएं जो करता है उसको प्राप्त हो जाती है, और भगवान बताया कि मयि एव विहितान हितान, वास्तव में जो उसकी इच्छा की प्राप्ति हुई वो बोलते भगवान बता रहे कि मई मतलब मैंने ही वो व्यवस्था की ताकि उसको इच्छा प्राप्त हो। और उसके बाद अंतवंत फलम तेसाम तद भवति अल्प मेधसाम, अल्प मेधसाम, मेधसाम मतलब बुद्धि, मेधसा और अल्प मेधसा मतलब कम बुद्धि वाले लोग। कम बुद्धि क्यों हो गई? क्योंकि बुद्धि का अपहरण हो चुका है, इसलिए बुद्धि कम हो गई। तो अब मेरे साम मतलब कम बुद्धि वाले लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं। देवान देव यजो यान्ति, और जब जिस देवता की जो पूजा करता है वो उसी देवता के पास जाता है, और भगवान बता रहे मद भक्ता यान्ति मामपि, और जो मेरा भक्त होता है वो मेरे पास आता है। और इस प्रकार से भगवान ने बताया है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्न मन्यन्ते माम अबुद्धय, अबुद्धय मतलब बुद्धय मतलब बुद्धिमान, अबुद्धय मतलब मूर्ख, बुद्धिहीन, देखिए बार बार बोल रहे हैं कि बुद्धिहीन व्यक्ति है। बुद्धिहीन व्यक्ति जो है वो क्या करता है, बाकी देवताओं की पूजा करता है। जो मेरे को ठीक से नहीं जानते हैं, जो बुद्धिहीन व्यक्ति जो मुझे ठीक से नहीं जानते, मेरे मेरे बारे में नहीं समझते बढ़िया से है, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं दे थिंक दैट आई मैं परम भगवान कृष्णा, वो मानते हैं कि मैं पहले निराकार था, क्या था अव्यक्तम, क्या मानते हैं कि मैं निराकार था अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, मानते हैं किसको, माम मुझे, कौन अबुद्धय, जो अबुद्धय हैं मूर्ख लोग हैं वो क्या कहते हैं, मुझे मानते हैं ऐसा कि मैं अव्यक्त हूं, पहले अव्यक्त था अभी बीच में प्रकट हो गया हूं, अवतार लिया हूं, पहले अब मेरा आकार नहीं था, ऐसे कौन मानते हैं जिनकी बुद्धि कम होती है, मैं निराकार, निराकार को जो मानते हैं है? परम भावम अजानंतो, वो ये नहीं जानते मेरे परम भाव को, नहीं जानते कि मैं पहले भी मेरा आकार था और आज भी माम अपरम अनुत्तम, वो ये जानते कि मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूं, कभी मेरा नष्ट ना, यानी कि मैं कभी आकार पकड़ लेता हूं कभी आकार नहीं छोड़ देता हूं, ऐसा नहीं है, मैं हमेशा एक तरह से रहता हूं। तो इस तरह से भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि नाहम प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृता, सब लोग मुझे नहीं समझ सकते, क्यों, जोग माया से मैं अपने आप को आवृत कर लेता हूं, ढक लेता हूं है? मूढ़ अयम ना भी जानाती, जो मूर्ख होते हैं, मूढ़ मतलब मूर्ख लोग, अयम मतलब मुझे इसे न अभी जानाती, नहीं जानते हैं, लोको माम अजम अव्ययम, वो नहीं जानते कि मैं अजम और अव्ययम, अजम मतलब अजन्मा, मेरा जन्म नहीं होता, मैं प्रकट होता हूं, भगवान जन्म लेते प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपा, या भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए थे देवकी के गर्भ, देवकी गर्भ से प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे कि नहीं कारागार में, और फिर देवकी और वासुदेव ने जब प्रार्थना किया तब भगवान जो है बालक के रूप में हुए, पहले शुरू में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए नारायण, फिर जब प्रार्थना किया देवकी ने कि कंस को पता चल जाएगा आप इस रूप में रहेंगे तो आप बालक बन जाइए, तब बालक बन गए, भगवान जन्म लेते हमारे, हम लोग जन्म लेते तो हम सोचते भगवान भी हमारी तरह जन्म लेते, ऐसा नहीं है। तो भगवान जो है वो परम भगवान और देवताओं में अंतर है, इस बात को हमें समझना है। देवता लोग क्या है, तो देवता लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनिवर्स, जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग आईएएस ऑफिसर होते हैं कि नहीं, उसी तरह से देवता लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, जल जल विभाग, जल विभाग के इंचार्ज कौन है, वरुण देव, और एनर्जी एनर्जी सप्लाई डिपार्टमेंट सूर्य देव, और मानव संसाधन विकास ब्रह्मा जी, ह्यूमन रिसोर्स कहां से आता है कि नहीं, ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं है ना, और होम मिनिस्टर जो नियम कानून व्यवस्था रखते हैं, दुर्गा देवी, दुर्गा जी के क्या इंचार्ज है, होम मिनिस्ट्री, या विष्णु जी स्वयं परिवार होम मिनिस्ट्री संभालते हैं, कोई देवता अगर गड़बड़ी करता है तो क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिट भवती भारत, जब भी भारत में, भारत में नहीं मतलब भारत अर्जुन को, हे अर्जुन जब भी और जहां भी, यदा यदा दो बार यदा, यदा मतलब दो बार यदा मतलब एक नहीं, एक यदा करते जहां भी और दूसरा यदा करते जब भी, जब कभी भी और जहां भी, एक यदा स्थान से संबंधित, दूसरा यदा समय से संबंधित, यदा यानी दो बार थोड़ी यदा करेंगे, इतना टाइम थोड़े भगवान के पास वेस्ट करेंगे, जहां कहीं भी और जिस जब भी है ना, मतलब भगवान बता रहे हैं यदा यदा ही धर्म से, धर्म का ग्लानि होता है, धर्म नष्ट नहीं होता है, उसका उसमें कमी हो जाती है, ग्लानि मतलब थोड़ी कमी हो गई है, तो क्या करता है, करते हैं धर्म का अधर्म को का विनाश करने के लिए, उत्थान करने के लिए मैं फिर से अवतार लेता हूँ और दुष्टों को मारता हूँ, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करता हूँ। तो भगवान कृष्ण जो है वो इस संसार के वास्तव में स्रोत हैं और बाकी देवता जो है उनके बिहाफ एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, एक एक पोर्टफोलियो एक एक व्यक्ति को दिया गया है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट के इंचार्ज अलग है और अनाज उत्पादन करना फल उत्पादन करना इसके डिपार्टमेंट चंद्रदेव चंद्रमा चंद्रदेव है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसके अलग अलग इंचार्ज है। वेल्थ डिपार्टमेंट के इंचार्ज कौन है, कुबेर जी। तो ये लोग एक एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं और क्यों, और बताया गया है कि उस पोस्ट को प्राप्त कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये लोग ये पोस्ट है, ये व्यक्ति नहीं है, क्या है, पोस्ट है। अलग अलग मनोन्तर में अलग अलग लोग इस पोस्ट को धारण करते हैं, जैसे अभी इंद्र जो है वो अगले मनवंतर में, अभी दैवसोत मनवंतर चल रहा है इसमें इंद्र है, लेकिन ये अगले मनवंतर में इंद्र नहीं रहेंगे, अगले मनवंतर में बताया गया है कौन इंद्र बनेगा, बलि महाराज। बलि महाराज जिनको वामन देव ने ठगा था ना, तीन स्टेप में सब कुछ पूरा, दो ही स्टेप में, तीसरे में तो बलि महाराज को ले लिया है कि नहीं, दो स्टेप में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया भगवान ने, तो बलि महाराज के इंद्र का पोजीशन ले लिया उन्होंने बलि महाराज से। हुआ ये कि इंद्र को बलि महाराज ने अटैक किया स्वर्ग पे और उन्होंने इंद्र को हरा दिया, इंद्र को हरा के स्वर्ग का सिंहासन पे कब्जा कर लिया। इंद्र की माता कौन है, अदिति, तो अदिति ने को बड़ा बुरा लगा, कश्यप ऋषि की दो पत्नियां एक अदिति और दूसरी दीति, तो दीति से दैत्य और अदिति से आदित्य, आदित्य मतलब देवता लोग, पिता दोनों के राक्षसों के और देवताओं दोनों के पिता एक ही माता अलग अलग है, समझ रहे बात को, सौतेली माता, इसलिए दोनों में झगड़ा होते रहता है। तो जब इंद्र हार गए तो अदिति को बुरा लगा, उसने क्या किया, कश्यप मुनि के पास गई, कश्यप मुनि ने उनको एक मंत्र बताया भगवान विष्णु का पूजा करने का, बोले इसको करोगी तो विष्णु आपको हेल्प करेंगे। उन्होंने पूजा किया, भगवान विष्णु ने बोला ठीक है मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट करूंगा और बलि महाराज से सब कुछ छीन के एक देते थे। तो वामन देव प्रकट हुए अदिति के गर्भ से, कश्यप मुनि के पुत्र अदिति के गर्भ से वामन देव प्रकट हुए। वामन देव गए बलि महाराज के पास, बोले कि आप मुझे तीन स्टेप जमीन दीजिए। बलि महाराज बोले क्या मजाक उड़ा रहे हो, मेरा तीन स्टेप मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बलि महाराज सारे संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा हूं, तुम मुझे तीन स्टेप जमीन मांग कर तुम मूर्ख लग रहे हो मुझे। तो बलि महाराज बोले नहीं अब क्या करे, ब्रह्मचारी मेरे को ज्यादा चाहिए भी नहीं, वैसे क्या करूंगा, तीन स्टेप बहुत है मेरे को। तो बलि महाराज ने बोला ठीक है, तो उन्होंने तीन स्टेप जमीन दे दिया, बहुत बड़ी गलती की, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, है ना, तो सब कुछ छीन लिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया और इंद्र को दे दिया, अदिति का इच्छा पूर्ति हो गया जिसके लिए उन्होंने तपस्या की थी, हो गया। फिर बलि महाराज समर्पित कर दिया अपने आप को वामन देव के चरणों में, वामन देव बड़े प्रसन्न हुए बलि महाराज से, बलि महाराज को सुतल प्लैनेट भेज दिया, सुतल लोक में वहां पे राजा बना दिया और बोले बलि महाराज को कि आप चिंता मत कीजिए, आपको इंद्र बनने की इच्छा है तो भी पूरी होगी लेकिन अगले मनवंतर में, आपको इंद्र बनाऊंगा मैं लेकिन अगले मनवंतर में, तक आप इंतजार कीजिए और इंतजार तब तक आपके लिए एक जगह बना के रखता हूँ, वहां पे जाके आप आराम कीजिए, है ना। तो सुपर प्लैनेट बनाया वो जस्ट लाइक स्पिरिचुअल वर्ल्ड सुतल प्लेन, वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है सुतल प्लेन पे। मनोन्तर के बारे में बताता नहीं। तो फिर वहां पे बलि महाराज चले गए और बामन देव वहां पे सुरक्षा करते हैं, बलि महाराज के गेट पे खड़े रहते हैं हमेशा, मैं गदा लेकर त्रिविक्रम भगवान के रूप में बलि महाराज के गेट पे दरवाजे पे बलि महाराज को वरदान दिया कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा सुतल लोक में, आप वहीं पे रहिए, है ना। और भगवान स्वयं वहां पे गदा लेकर बलि महाराज की रक्षा कर रहे हैं, और उन्होंने उनको बोला कि आप इंद्र के पोस्ट प्राप्त करेंगे, उसके बाद भगवत धाम जाएंगे, इसलिए सावधान रहना चाहिए भगवत धाम। अगर आप भगवान से कुछ मांगा तो वो आपको देके ही ले जाएंगे इधर भगवत धाम। इसीलिए आप देखिए ध्रुव महाराज को भी, ध्रुव महाराज ने इच्छा की कि मेरे को इंद्र से भी, मेरे पिता ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य जब भगवान आए प्रकट हुए उनको देख के भूल गए और बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आप ही मिल गए हीरा मिल गया तो मुझे कांच के टुकड़े क्यों चाहिए। तो भगवान ने बोला नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने इतनी तपस्या की मुझे बुलाया तब तो मिलेगा आप। तो उनको ध्रुव लोक दिया, ध्रुव लोक जो कि ब्रह्म लोक से भी ऊपर है, ध्रुव लोक जो है वो ब्रह्म लोक से भी ऊपर है, सारे लोगों का केंद्र बिंदु ध्रुव लोक, वहीं से सारे ब्रह्म लोक भी वहीं से कंट्रोल होता है, वहां भी ध्रुव महाराज को राजा बनाए। और फिर बोला कि आप 36 वर्ष तक राज्य करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे धाम में आएंगे। हाँ 36 वर्ष तक, सदियों की घटना है ये, उस समय उम्र कितनी होती थी 1,00,000 वर्ष, तो 36,000 कोई ज्यादा नहीं है कि नहीं, कितना परसेंट हुआ 36% है कि नहीं। हाँ आपकी उम्र 70 साल, तो 70 साल की 36% कितना हो 21 वर्ष, अभी तो 21 वर्ष पढ़ाई करते हो है कि नहीं, 21 वर्ष जॉब करते हो, इसके बाद रिटायरमेंट होता है 60 वर्ष की उम्र, 25 से 60 कितना हो गया 35%, 35 साल, 35 साल 70 साल में कितना 50%। उनको तो 36% उन्होंने राज्य किया, आप 50% राज्य करते हो अपने लाइफ का तुलना किया परसेंटेज में तो ज्यादा नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो बलि महाराज को इंद्र बनाए। तो कहने जाते हैं कि ये पोजीशन जो है इंद्र का बदलते रहता है, बताया था कि अगले बार अगर पिछले मनवंतर से अगले मनवंतर में चेंज होते सारे पोस्ट, तो ब्रह्मा जी का भी पोस्ट चेंज होता है। हाँ ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष, उसके बाद उनकी मृत्यु होती है, हमारे जैसे नहीं 100 वर्ष, उनका 100 वर्ष स्केल अलग है। ब्रह्मा जी का एक दिन जो है उसको बोलते हैं एक कल्प, हाँ एक कल्प, क्योंकि एक कल्प में कितने युग, कितने युग होते हैं 4,000 युग, 4,000 युग मतलब सतयुग द्वापर कलयुग त्रेता, ये तीन चारों को मिला के एक चक्र हुआ। इसको इस तरह से 1,000 चक्र जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा, और फिर इतने ही चक्र का 12 घंटे की रात, उसको एक कल्प। तो दो कल्प ब्रह्मा जी के 24 घंटे में कितना कल्प हो गया, दो कल्प। और इस तरह से ब्रह्मा जी 100 साल तक जीवित रहते हैं, और उसके बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति पोस्ट संभालेगा। ये ब्रह्मांड भी विलय हो जाता है फिर से ब्रह्मांड, और जब अगली बार ब्रह्मांड की रचना होती है तो फिर से अलग व्यक्ति ब्रह्मा का पोस्ट। ये देवताओं का जो पोस्ट है ये क्या है, चेंज होता रहता है। ये इसलिए भगवान नहीं, आप ही भगवान बन सकते हैं, ब्रह्मा बन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा का पोस्ट हासिल, जैसे आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है ना, तो सिविल आप आईएएस ऑफिसर कोई भी बन सकता है, जो भी व्यक्ति बढ़िया से पढ़ाई करे मेहनत करके रट जाए सारी किताबों को सुध की तरह एग्जाम में उगल दे तो वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, करेक्ट है? तो उसी तरह से ब्रह्मा जी का पोस्ट भी हासिल करने के बताया कि जो भी व्यक्ति 1,000 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का कड़ाई से पालन करता है बिना फेल किए हुए 1,000 जन्मों तक, तो वो ब्रह्मा के पोस्ट प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। या जो भी व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ अगर कंप्लीट कर लिया सफलतापूर्वक तो वो इंद्र का प्रोष्ठ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति तपस्या करता है या यज्ञ करता है तो इंद्र उसके पीछे पड़ जाता है, क्यों भंग करना है इसकी तपस्या, लेकिन विश्वामित्र मुनि के पास भेज दिया मेनका को, किस लिए? डर हो गया कि कहीं तपस्या सफल हो गया तो पोस्ट ले लेगा मेरे, पोस्ट ले लेगा ना। ऋतु महाराज ने जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, सफल कर रहे थे, इधर ने घोड़ा चुरा लिया, क्योंकि वो चुरा लिया ताकि सफल न कर पाने तो मेरा पोस्ट ले लेंगे। इसे क्या प्रमाणित होता है कि देवताओं का क्या है, पोस्ट है, डिपार्टमेंट, जैसे हर 5 साल पे पार्लियामेंट में पोस्ट चेंज हो जाता है कि नहीं, कांग्रेस की सरकार बनी है सारे मिनिस्टर कांग्रेस है कि नहीं, उसी तरह से ये चेंज होता रहता है ना। तो इसलिए देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि उनको उनको हम देख के मुंह घुमा लें ऐसे, ये क्या, ये तो देवता है, ऐसा नहीं करना है, बहुत सावधान रहना है, आदर देना है ना, उनको रिस्पेक्ट करना है जो भी है, पर भगवान के बिहार पे वो सेवा कर रहे हैं, भगवान ने उनको पोस्ट दिया है, स्पेशल आदमी है, कुछ तो पावर है, तभी तो तपस्या किया है, योग किया है, तभी तो उस पोस्ट को प्राप्त किया है। हमसे तो कम से कम काफी गुना अच्छे है, सम्मान करना है उनका, लेकिन पूजा केवल कृष्ण की, देवताओं को क्या करना है, सम्मान, रिस्पेक्ट देना है, प्रणाम भी कर सकते हैं देवताओं को, है ना, लेकिन पूजा किसका करना चाहिए, कृष्ण का, ये विधि बताई गई। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायो, हे धनंजय मुझसे बढ़ के कोई सत्य नहीं है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन, मुझसे बढ़ के कोई सत्य, मत परतरम न अन्यत, न अन्यत मतलब कोई दूसरा सत्य नहीं है मुझसे बढ़ के, मत परतरम मुझसे ऊपर, सब कुछ मेरे ऊपर स्थित है, जैसे कि धागा के ऊपर मणियां स्थित होती है माले में, करेक्ट, तो धागा दिखाई देता है नहीं दिखाई देता, लेकिन धागा है कि नहीं, वही मेन है, आधार है सबका, लेकिन धागा दिखाई, भगवान ने कहा उसी तरह से सबका आधार मैं ही हूं, लेकिन मैं दिखाई नहीं देता, मैं बैकग्राउंड में रहता हूं, हाँ बैकग्राउंड में, धागा बैकग्राउंड में रहता है कि नहीं, तो उसी तरह से भगवान बैकग्राउंड में पीछे रहते हैं, सबको पकड़े रखते हैं ताकि कोई गिरे ना, इसीलिए चला पाते हैं सर वो देवता लोग। अच्छा, जब कभी कभी मुश्किल में पड़ जाते हैं देवता लोग, जब कब असुर अटैक करते हैं, है कि नहीं, तब गौर के भाग के जाते हैं भगवान, हाँ भगवान रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रावण ने खूब पिटाई की देवताओं की, है कि नहीं, यमराज को बांध के अपने पैरों के नीचे, जब बैठता था सिंहासन पे तो वहां पे यमराज जी को बांध के नीचे, जहाँ पे पादान होता है ना, पादान, तो ऐसे नीचे पैरों के नीचे उनके यमराज के ऊपर पैर रखता था, है ना, और जितने नौग्रह थे सबको सामने अपने रस्सी से बांध के, काल को भी बांध कर रखा था अपने बेड से, बेड में जो चौपाई में होता है ना उसका खटिए का, काल को बांध के रख दिया था, सारे देवता लोग थर थर कांपते थे, राउंड जब आता तो थर थर कांपने लगते थे सारे देवता, तो इसका मतलब है कि देवता को बनना ठीक नहीं है, तो देवता बनना ठीक नहीं है, समस्या आ सकती है, तो देवता की पूजा करने में क्या हो सकता है, जब देवता ही सुरक्षित नहीं है तो उनके पूजा करना है कैसे सुरक्षित है। इसीलिए आप देखिए असुर लोग क्या करते थे, अत्याचार करते थे, देवताओं को बांध के ले जाते थे, जो जो देवताओं की पूजा की खूब पिटाई, है ना, खूब पिटाई करते थे देवताओं की पूजा करने वालों को, तो ना भगवान के पास सब दौड़ के जाते हैं, है ना, ये भगवान कुछ कीजिए, तो भगवान बोलते थे कि अब ठीक है बरदान दो, बड़ा बढ़िया से बरदान दिया ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, रावण को बरदान किसने दिया, देवताओं ने ही दिया ना, तो उन्हीं से बरदान लेके उन्हीं की पिटाई करते हैं, तो उनको मारने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, देवताओं को सहायता के लिए, देवताओं की सहायता के लिए स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, और असुरों को दबाते हैं। तो इससे स्पष्ट, अगर शास्त्रों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि परम भगवान कृष्ण है, और कृष्ण के कई प्रकार के अवतार हैं, हैं? जैसे कि कृष्ण जो हैं वो नाना प्रकार के अवतार लेते हैं, हैं? रामादि मूर्ति से कला तिष्ठन नाना अवतार करोत भूमे सुकिंतु कृष्णा स्वयं परम कुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। राम बरा कृष्ण कुर्मा है, जितने अवतार हैं ये अवतार कौन धारण करते हैं? कृष्ण। रामादि मूर्ति से कला नियमेन तिष्ठ, कला मतलब अवतार धारण करते हैं, हैं? नाना अवतार अवतारम अक्रोध, नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं, अक्रोध मतलब करते हैं, हैं? भुवने से इस संसार में, किंतु क्या हो गए, किंतु कृष्णा परम कुमानी हो, कृष्णा स्वयं परम कुमानी हो, लेकिन कृष्ण जो है स्वयं क्या है, परम पुरुष है, किंतु कृष्ण अवतारित नहीं है, वो क्या है, परम पुरुष है, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूं, साधारण गोविंद का नहीं, ऐसे गोविंद का भजन करता हूं जो सबके स्वामी है, सारे अवतार उनसे उद्धृत होते हैं, जितने अवतार राम है, राम नृसिंह बरा सारे अवतार कृष्ण से निकलते हैं, विष्णु भी कृष्ण के से विस्तार होते हैं, विष्णु जो है वो जब सृष्टि की रचना होती है तब विष्णु आते हैं, सृष्टि के अंदर विष्णु आते हैं तब तब सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि की रचना ये तो विष्णु नहीं होते, विष्णु का काम तब आता है जब सृष्टि की रचना होती है, और सृष्टि का संहार है तो विष्णु कहाँ रहते हैं, क्षीरोदचारी विष्णु तो रहते ही नहीं है, महाविष्णु रहते हैं कारण सागर में, जो कि नारायण से प्रकट होते हैं, और नारायण जो है वो संकर्षण से प्रकट होते हैं, और संकर्षण जो है वो बलराम से प्रकट होते हैं, बलराम जो है वो कृष्ण से प्रकट होते हैं, ये पूरा विस्तार है कैसे सृष्टि की रचना होती है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हैं? और हनुमान जी की या शिव जी की जो पूजा करते हैं तो उनका क्या है, तो शिव जी की पूजा असुर लोग करते हैं ताकि उनसे कुछ बेनिफिट लिया जाए, और शिव जी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, है ना, कोई तो थोड़ा एक पत्ता चढ़ा दिया बेल पत्थर तो खुश हो गए, हाँ मांगो जो मांगना है दे भी देते हैं, बाद में फंस जाते हैं, हाँ भस्मासुर को दे दिया फंस गए, हाँ वृकासुर था एक असुर, उसने भगवान शिव की बहुत तपस्या की, वहाँ सिर काट के डालने लगा, शरीर के मांस काट के डालने लगा, आग में शिव जी को दया आ गई कि कहीं मर न जाए, प्रकट हो गए, उन्होंने बोला प्रजा मांगो, तो उसने बोला कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो मर जाए, ऐसे ही वरदान मांगेंगे असुर लोग, किसी के भलाई के वरदान नहीं मांगेंगे, या तो ऐसा कि किसी को मार दूं या किसी को काट दूं, किसी को लूट लू, है ना, ऐसा ही बाजार मांगते हैं सब लोग, और शिव जी क्या करेगा, फंस गए तो देना पड़ेगा, दे दिया, ठीक है चलो जाओ, दे दिया तो दे दिया, जैसे ही दिया तो उसने सोचा तो फिर टेस्ट कैसे करूं, तो आपसे ही शुरुआत हो जाए, न्यूक्लियर बम का टेस्ट ही होता है ना, न्यूक्लियर टेस्ट होता है ना अपने देश में, तो दौड़ा पीछे से जी, अरे क्या कर रहा है तू, बोले थोड़ा टेस्ट ही कर रहा है, तो मेरे ऊपर थोड़ा टेस्ट ही करेगा, बोला तब क्या अभी के ऊपर होगा, तो शिव जी परेशान भागने लगे, शिव जी वो पीछे पीछे भाग रहा है, शिव जी आगे आगे भाग रहे हैं, बड़े परेशान छोड़ नहीं रहा है, तो फिर भगवान को पुकारा, हे कृष्ण रक्षा कीजिए मेरी, शिव जी ने पुकारा, तो जब शिव जी ने जब पुकारा तो भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हुए एक सुंदर ब्रह्मचारी के रूप में, बड़े ही मधुर स्वर में विकास से बोले, अरे कहाँ जा रहा है तू, इतना तेजी से भाग रहा है, बोला डिस्टर्ब मत करो अभी इसको मारना है शिव को, रुक जाओ बात नहीं करूंगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट काम पे जा रहा है, बोला सुनो सुनो असुर राज सुनो, जरा मेरी बात तो सुनो, जब सुना असुर राज तो इंप्रेस हो गया कोई तो वैसे मुझे असुरराज बोला। हाँ बोलो क्या बात है। अरे तुम मूर्ख हो गए हो, जब से दक्ष ने श्राप दिया है शिव जी को तब तो उनके अंदर वरदान देने की शक्ति है ही नहीं, टेस्ट करने की क्या जरूरत है। मतलब क्या बात कर रहे हो, इतना मेहनत किया मैंने तो फिर तो बोले कि हाँ तुम अगर नहीं मानते तो टेस्ट करके देख लो। तो कैसे टेस्ट करो, बहुत आसान है, अपने सिर पे हाथ करके। वैसे भी कोई महत्व है नहीं इनके प्रधान का, कुछ नहीं होगा मैं बोल रहा हूँ ना। उसने बोला ठीक है तो हाथ रख के देखा, अपने सिर पे हाथ रख के देखा वो जल गया, मर गया वहीं पे। तब भगवान शिव बड़े शांति महसूस किए, आए भगवान के चरण में प्रार्थना की, बोले आप थैंक यू वेरी मच। मैं तो फंस ही गया था वरदान लेकर। तो भगवान कृष्ण उनको बोला कि आप सोच समझ के वरदान दिया कीजिए। आप इतने खून हो जाते हैं कि किसी को कुछ भी दे देते हैं, तो सोच समझ के वरदान दिए। मेरे लिए समस्या हो गई, इसको कैसे संभालो। उसी तरह से ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया हिरण्यकशिपु को, है ना। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया और हिरण्यकशिपु ने उस वरदान का मिसयूज करना शुरू किया। उसके द्वारा नाना प्रकार की समस्याएं उसने खड़ी कर दी, पूरे उत्पात मचा दिए पूरे ब्रह्मांड में। हाँ फिर जब देवता लोग प्रार्थना किए भगवान से, तो भगवान बोले कि मैं क्या करूँ, आप लोगों ने दिया वरदान, मेरे पास क्यों आए आप, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। हाँ मेरा एक भक्त है प्रहलाद, उसका अपना ही पुत्र होगा, ये मूर्ख उसी को मारेगा, जब मारने का प्रयास करेगा मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाएगा, उस समय मारूंगा इसको, तुरंत मारूंगा, अभी नहीं। आप लोगों को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोग खुश भी तो होते हो जब कोई आपकी पूजा करता है। तो आप लोग मेरे से कंपटीशन करते हो, खुश हो जाते हो कि मेरे को पूजा कर रहा है। आप लोग बोलना चाहिए ना उनको कि मेरी पूजा करे। तुझसे पहले पूजा स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं ही हूँ भगवान, लाओ लाओ तुम। और जब समस्या आती तो बोल के मेरे पास आते हो आप लोग, इसमें मैं आप लोगों की हेल्प नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक भक्त है जो हमेशा मेरा गुणगान करता है और वो सबको बताता है कि मैं ही भगवान हूँ। उस भक्त को अगर नुकसान कोई पहुंचाएगा फिर मैं उसको मारूंगा। इसलिए जब प्रहलाद को नुकसान पहुंचाया, उसने टॉर्चर किया, तब भगवान को बहुत गुस्सा आया, फिर भगवान प्रकट होकर उसको मारे। हाँ प्रहलाद के लिए बहुत क्रोध था भगवान को, देवताओं को भी बहुत क्रोधित थे कि इसने वरदान दे दिया। इसलिए जब भगवान नरसिंह देव क्रोधित थे तो कोई देवता को नहीं गया उनके पास, प्रार्थना भी करने नहीं गए। जल्दी जब भी भगवान का अवतार होता है तो देवता लोग जाके काम खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, प्रार्थना करते हैं। लेकिन नरसिंह देव केस में कोई डर के मारे गया भी नहीं, क्यों, तो बहुत क्रोधित थे, असुर पे तो क्रोध थे, देवताओं को बड़ी क्रोध थे, क्यों, वरदान देके और मेरे भक्त की पिटाई करवाते हैं लोग। देवता लोग अगर वरदान नहीं देते तो मेरे भक्त को कष्ट नहीं होता ना, इसलिए गुस्सा में थे, इसलिए ब्रह्मा जी पीछे छुप गए थे। लक्ष्मी को बोले आप जाइए थोड़ा भगवान को शांत कीजिए। लक्ष्मी बोली मैं भी नहीं जा सकती इस समय, मेरा भी मैंने कोई बस नहीं है, अभी तो पूरे गुस्से में है अभी, मैं सारे देवता भाग गए छुप गए जाके। तो लास्ट में आइडिया है कि प्रहलाद को भेजा जाए, तो प्रहलाद को भेजा गया। प्रहलाद जब गए माला लेकर गए तो उन्होंने भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और उनको चाटने लगे प्रेम बस। तो भगवान जो है वो परम भगवान कृष्ण है, इस बात को हमें मानना चाहिए और इसलिए उन्हीं की पूजा करना शास्त्रों में बताया गया है। किसके लिए, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, और बाकी जो अल्प मेधसाम हैं वो क्या करते हैं, बाकी लोगों की पूजा करते हैं, करने दीजिए कोई दिक्कत भी नहीं है, है ना। लेकिन आप सब अल्प मेधसाम मत बनिए कहने का, है ना। बहुत जन्मों के बाद आपको ये मौका प्राप्त हुआ है, आप इसको इस बात का ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। ये बहुत जन्मों के बाद भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति बिरला ही व्यक्ति होता है जिसको इसका ज्ञान दिया जाता है कि वो समझ सके कृष्ण ही परम भगवान हैं और ऐसा व्यक्ति कृष्ण की पूजा करता है, इसके अलावा और किसी की पूजा नहीं करता। और वो व्यक्ति जो है वो कृष्ण को प्राप्त करता है और बाकी लोगों का वो सम्मान करता है, बाकी लोगों का आदर देता है, प्रणाम करेगा, लेकिन पूजा कृष्ण नहीं करेगा। ये इसलिए भगवान कृष्ण जब भगवत गीता के अंतिम श्लोक को बताते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम ताम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच, सारे धर्मों को त्याग दो। सबसे लास्ट में बता दिए सारे धर्मों को और माम एकम शरणं व्रज, माम एकम, ये नहीं बोले कि सर्व सर्वम शरणं व्रज सारे देवताओं की शरण में जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे भगवान, बोल रहे हैं माम एकम केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तो आप पूछोगे फिर कहीं गुस्सा हो गए तो शनिदेव उनको छोड़ दूंगा तो और पाप नहीं लगेगा है? तो बोल रहे कि नहीं, अगर पाप लगेगा तो टेंशन मत लो, क्यों? क्योंकि अहम काम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसको करने से, बाकी लोगों को छोड़ने से, मेरी शरण में आने से तुम्हें अगर कुछ पाप लगेगा भी तो मैं तुम्हें तुम्हारा लोन माफ कर दूंगा, है ना। और बोलते मासुचर, मासुचर मतलब डरो मत, देखो और कितना क्लियर बोलेंगे, इतना स्पष्ट बोल दिया सबने, इतना खुल के बोलना बोल दिया भगवान ने, और कितना क्लियर चाहिए आपको, है कि नहीं। इतना स्पष्ट वर्णन कर दिया भगवान कृष्ण भगवद गीता में, इसलिए पढ़िए आप ध्यान पूर्वक, आपको क्लियर पता चलेगा। सारे आचार्यों ने ही कृष्ण को भगवान माना है, शंकराचार्य ने कृष्ण को भगवान माना, एको देव देव की पुत्र एव, एको गीतम देव की पुत्र गीत, एको एको मंत्र तस्य नामानि एव, एको कार्य तस्य देवस्य सेवा, Let there be only one God, the Son of Devaki. केवल एक ही भगवान हम होना चाहिए, कौन? कृष्ण देवकी पुत्र, शंकराचार्य बोले। और केवल एक ही किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी? भगवद गीता। और जरूरत नहीं है पढ़ने का, शंकराचार्य ने कहा, शंकराचार्य का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ। और एक ही मंत्र, क्या? कृष्ण के नाम का मंत्र, देव की पुत्र है? नाम से जो मंत्र बना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। एक ही मंत्र और एक ही कार्य होना चाहिए, क्या? तस्य देवस्य सेवा, कृष्ण की सेवा। जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा लोगों की सेवा करने की, पूजा करने की जरूरत नहीं है अन्य देवताओं की। इसलिए स्पष्ट शंकराचार्य ने इसका उल्लेख किया है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम रे मूढ़ मते, अरे मूर्खों गोविंद का भजन करो। तीन बार बोल रहे हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। शंकराचार्य, माधवाचार्य कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन माधवाचार्य कृष्ण की पूजा करते थे, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की पूजा करते हैं, जितने शुद्ध भक्त हुए हैं कृष्ण की पूजा करते हैं। तो इसलिए हमें कृष्ण का परम भगवान को मानते हुए कृष्ण को और उनकी पूजा करनी चाहिए। तो जितने देवता हैं वो जीव तत्व हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं, इसलिए उनको पूजा करने से आपको थोड़ा फायदा मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, फिर नुकसान भी हो सकता है। लेकिन कृष्ण की शरण में चले जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए हम सुरक्षित रहेंगे। हरे कृष्ण। तो यही पे मैं सोच रहा था कि विश्राम दूंगा और आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मनवंतर, बहुत बढ़िया। तो ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा होता है, एक दिन बताया जिसको एक कल्प बोलते हैं, तो कलयुग जो होता है वो 432,000 वर्ष, कितना? 432,000 वर्ष, तो आप 864,000 दुगुना, त्रेता 3 गुना 1,96,000 और सतयुग 4 गुना 17,28,000, चारों को मिला के 43,20,000, ये एक चक्र हो गया। और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर से सतयुग आएगा, इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। जब 72 चक्र बीत जाता है, 1,000 चक्र जब बीत जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रह्मा जी का सुबह से शाम हो गया, शाम 12 घंटा, 12 घंटा में 1000 चक्र बीतता है ब्रह्मा जी के स्केल से, उसको बोलते एक कल्प। क्या बोलते हैं? तो 43,20,000 गुणे 1000, कितना वर्ष को बोलते हैं? एक कल्प। वो ब्रह्मा जी का एक दिन और उतने की रात, एक कल्प रात एक कल्प दिन। और ब्रह्मा जी का जो एक कल्प होता है, एक दिन 12 घंटा, उनमें उनका ऑफिस खुला रहता है, रात में बंद हो जाता है शाम में। तो ऑफिस बंद हो जाएगा क्योंकि ब्रह्मा जी भी रेस्ट करने जाते हैं ना शाम में, रेस्ट भी करेंगे, माला भी करना है उनको। ब्रह्मा जी भी माला करते हैं ना, चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आप देखिए ब्रह्मा जी के हाथ में माला रहती है, अभी इनका फोटो देखिएगा ध्यान से, रहता है ना, इसलिए आप लोगों के हाथ में भी होनी चाहिए, आपके हाथ में नहीं है। जब ब्रह्मा जी को माला जप करने की जरूरत है तो आपको क्यों नहीं है? आप लोगों को तो जरूर होना चाहिए माला, है कि नहीं? हम तो ब्रह्मा से बड़े तो नहीं है ना, कम से कम ब्रह्मा जी भी डरते हैं इसीलिए माला करते रहते हैं, लेकिन हम नहीं डरते। क्यों? क्योंकि मूर्ख डरते नहीं है। क्या होगा, ज्यादा पिटाई होगी, है कि नहीं? मुर्दे पे एक मन माटी डालो या सब, मरता क्या नहीं करता। तो मनवंतर थोड़ा एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। तो मनवंतर हुआ तो अब बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक कल्प होता है, मतलब 1000 चक्र जुगों का, उसमें 14 मनु आते हैं। कितने मनु? 14 मनु एक कल्प में, 14 मनु। और हर मनु जो है 72 चतुर्युगी तक रहते हैं। कितना? 72, 72। चार युगों का जब 72 चक्र बीत जाता है तो वो एक मनु का पीरियड होता है। तो 72 × 14 कितना हो गया बताइए? 14 × 7 = 98, 980, और 14 × 28 1008। मतलब कि 14 में 6 मनु जो होते हैं उनका जो है वो 71 चक्र का होता है, और 8 जो होते हैं उनका वो 72। चलिए 8 मनु 71 और 6 मनु 72 होता है, टोटल मिला के 1000। तो 14 मनु में जैसे सबसे पहले मनु जो थे, इस मनु, इस एक कल्प की बात कर रहा हूं मैं, इस कल्प की, अभी जो चल रहा है कल्प, तो ये जो ब्रह्मा जी का 50वां साल चल रहा है अभी, तो उसका जो मनवंतर अभी चल रहा है, जो ये कल्प जो चल रहा है अभी, उस कल्प में जो है, उस कल्प में 20 मनु जो थे वो सबसे पहले स्वयंभू मनु, सबसे पहले मनु स्वयंभू, उसके बाद स्वरोचिस, चक्षुषा, तामस, उत्तम, रवत और अभी वैवस्वत मनु। तो 6 मनु जा चुके हैं, 6 मनु जा चुके हैं इस कल्प में, मतलब आज के दिन में जो अभी चल रहा है, ऑफिस खुला हुआ है, तो अभी 6 मनु बीत चुके हैं। तो 6 मनु मतलब 72 × 6, इतने चक्र बीत चुके हैं। और ये जो 7वां चल रहा है वैवस्वत मनु का, वैवस्वत मनु का अभी 72 चक्र होता है, तो 72 चक्र में अभी 28वां चक्र चल रहा है। कौन सा? हाँ, 24वें चक्र में भगवान रामचंद्र अवतार लिए थे, और ये 28वां चक्र है। 28वें चक्र में अभी चल रहा है, इसमें 28वें चक्र में कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग का कितना वर्ष बीत गया? 5000 वर्ष बीता है, 4,27,000 बाकी है। द्वापर युग में आए थे, पिछले द्वापर में ही आए थे, 5000 वर्ष पहले आए हैं भगवान कृष्ण अवतार लिए। कौन? इसी चक्र में 28वें में ही आए हैं 5000 वर्ष पहले। तो इस तरह से ये, और हर बहुत कैलकुलेटेड गणना है। ब्रह्मा जी के एक एक दिन का नाम है, ये कल्प है, हर दिन का अलग अलग नाम दिया हुआ है ब्रह्मा जी का, तो पर नाम है। तो इस तरह से ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविक चीजें हैं। तो हम छोटे हैं इसलिए हमें पता नहीं चलता है ना। जैसे मच्छर है नाली में जन्म लेता है, उसको पता है कि क्या चल रहा है दिल्ली में या जयपुर में? नहीं पता है। रात में जन्म लेते हैं कई मच्छर, रात में ही सब कुछ काम करके मर जाते हैं, एक ही रात में उनका पूरा 100 साल। हाँ, मच्छर को भी मत मारिए, मच्छर जाने लगा लीजिए ठीक है। हाँ तो मारिए मत ठीक है, प्रयास कीजिए कि उसको उड़ा दीजिए। मारना नहीं है, प्रयास कीजिए कि मारिए मत है ना, या ऑल आउट लगा लीजिए, भगा दीजिए उसको। नहीं भाग जाएगा ना, ऑल आउट से मरेगा नहीं, मर जाता है तो खिड़की खोल देंगे तो भाग जाएगा है ना, खिड़की खोल देंगे तो भाग जाएगा। मारिए मत है ठीक है, मारना ठीक नहीं है, किसी को कष्ट मत पहुंचाए अपने सुख के लिए ठीक है, नहीं तो वो भी अगले जन्म में आपको मारेगा है ना। तो हमें मिनिमम पाप करना है कम से कम, और कुछ गलतियां हो ही जाती है कितना भी आप प्रयास, वो माफ हो जाएगा है ना। लेकिन अगर जिसे बच सकते हैं वो कर रहे हैं तो वो माफ नहीं होगा। प्रयास कीजिए, भगवान आपको भाव देते हैं, आप कितना प्रयास कर रहे हैं बचने का पाप से, वो इम्पोर्टेंट है ठीक है। और आप प्रयास कर रहे हैं सिंसियरली, उसके बाद भी कुछ चिटिया मर गई या कुछ मच्छर मर गए है ना, तो फिर उसको उतना सीरियस नहीं लिया जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए ये लागू है। और भक्त लोग अगर अनजाने में भी पाप करते हैं उनको भी लगता है, भक्तों को नहीं लगता है, भक्तों को डिस्काउंट मिलता है। मतलब यही कि भाव भाव में रहिए और ज्यादा गलती मत कीजिए है ना। अनजाने में गलती हो गया तो उतना डिस्काउंट मिलेगा। अगर माला जप कर रहे हैं भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तब वो भी है ना, तब मिलेगा। एनी अदर क्वेश्चन, किसी का और प्रश्न है? हाँ टाइम क्या हुआ? हाँ तो अभी 2-3 क्वेश्चन और लेंगे हम लोग। हाँ मृत्यु हुई थी तो आदि पुरुष कैसे हो गए फिर? कृष्ण कहते हैं मृत्यु हुई, अभी मैंने सोचा कि भगवान ना तो जन्म लेते हैं ना मरते हैं, तो मृत्यु कैसे हो जाएगी भगवान की? नहीं एक मिनट प्लीज जस्ट वेट कीजिए, पहले इनको क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो लीला है भगवान की वो वास्तव में ये सत्य नहीं हुई, सत्य घटना नहीं है। बहलिये ने तीर मारा था, सोचिए जो भगवान जो है वो इतने बड़े बड़े राक्षसों को के अस्त्रों से नहीं मरे तो क्या एक बहेली के तीर से मर जाएंगे? हाँ भगवान राम ने बोला था कि ऐसा लगेगा संसार में ठीक है, लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं मर गया, लेकिन मैं मरूंगा। जैसे कई बार हमारे गांव में मदाड़ी आता है, मदाड़ी जानते हैं? मदाड़ी मतलब जो बंदर को नजर जाते हैं, और कुछ मदाड़ी ऐसे जो इंद्रजाल खेलते हैं है ना, उसमें क्या करते हैं एक बच्चे को चाकू मार देते हैं पेट में और खून निकलता है, लगता है सबको को मर गया है, लेकिन दिखता भी है सबके सामने खून निकल रहा है लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता है ना। तो वो उसको क्या बोलते हैं इंद्रजाल, क्या बोलते हैं, होता नहीं है पर लगता है ऐसा कि हुआ है। तो ये जो लीला है भगवान की, ये लीला ये कोई है इंद्रजाल है ना, ताकि लोगों को मसाला मिले। जो भगवान में विश्वास नहीं करना चाहते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं मानना चाहते हैं, तो भगवान जो है संसार में उनके लिए भी कुछ मसाला छोड़ देते हैं, जिसको देख कर वो सोचे कि भगवान कृष्ण साधारण व्यक्ति है। लेकिन जिसको कॉमन सेंस भी होगा वो सोच सके कि जो भगवान जो है जिन्होंने इतने बड़े बड़े राक्षसों को पिटाई कर दिया है तो एक बहेली के तीर से कैसे मर सकते हैं? आप ही बताओ मुझे। हाँ
हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो भगवान ने वरदान दिया कि तुम मुझे मार दोगे।
भगवान के मरने का मतलब हम लोग कैसे मरते हैं वो नहीं,
वो नहीं हुआ ना मरना, वो ऐसा कि आपको लगेगा कि आपने मार दिया, चलिए ठीक है हाँ, क्योंकि भगवान तो मरते ही नहीं है, भगवान के बाद आप भी नहीं मरते हो, आप भी आत्मा हो। कल आपने डिवाइस में देखा होगा सेशन में, आत्मा क्या है, न जायते मृते वा कदाचित नाहं भूत्वा भविता वा न मूय, जिसका न तो मृत्यु होता है न जन्म होता है। तो भगवान भी अजन्मा है, लेकिन ऐसा लगता जैसे भगवान जन्म लेते हैं हमें क्या लगता है कि जन्म ले रहे हैं देवकी के गर्भ से, लेकिन जन्म नहीं लेते, प्रकट हुए है कि नहीं, लेकिन देवकी माध्यम बने। समझ रहे बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि देवकी माध्यम बनी है, उनका गर्भ भी दिख रहा था लेकिन भगवान गर्भ से प्रकट नहीं हुए, भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। समझ रहे बात, उसी तरह से ये जो पहलिया था ये माध्यम बना, भगवान को प्रकट होना था, उन्होंने डिसाइड कर लिया था, बहेलियों को माध्यम बनाया था इस संसार को छोड़ने के लिए। समझ आ रहा है, जैसे जन्म के लिए माध्यम बनाते हैं उसी तरह से इस संसार को त्यागने के समय भी माध्यम बनाते हैं किसी को। समझ आ रहा है, लेकिन भगवान क्योंकि फिर से अवतार फिर कैसे होता, फिर अवतार हुआ ना अभी कृष्ण के जाने के बाद, फिर द्वापर में बुद्धा अवतार हुआ है कि नहीं, बुद्धा अवतार चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया, अभी कल की अवतार आएंगे हैं। समझ आ रहा है, वैसा नहीं, और भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं और अपनी इच्छा से संसार को छोड़ के जाते हैं। हाँ, किसी को माध्यम बनाते हैं अपनी ही इच्छा से, वरदान भी दिया किसकी इच्छा से, अपनी इच्छा से। समझ आ रहा है, ये भगवान अपनी इच्छा से ये कार्य करते हैं इस संसार में, तो उसको हमें ऐसा नहीं सोचना कि मर गए या मार दिया किसी ने, ऐसा नहीं, ठीक है। और कोई प्रश्न, हाँ दूसरे देवताओं का प्रसाद आप लेंगे तो आपको आपके अंदर जो है वो चेतना खराब हो सकती है आपकी, यहाँ तक कि अगर कृष्ण का भी प्रसाद है और अगर शुद्ध चेतना से व्यक्ति ने भगवान को भोग नहीं लगाया है उसको आप लेंगे तो आपका चेतना खराब हो सकता है। अगर किसी ने कृष्ण को भोग लगाया है लेकिन गलत चेतना से अब उसको लेंगे तो आपकी चेतना खराब हो सकती है ना। हाँ, तो इसलिए सेफ है कि आप मत लीजिए।
वैसे तो कहा गया प्रसाद का तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए, जब हमको कोई दे रहा है तो हम कैसे कर
ले लीजिए, तिरस्कार मत कीजिए, लेकिन आप खाइए मत है ना, गाय को दे दीजिए, हाँ पशुओं को खिला दीजिए, ठीक है ना। तो है किसको, नहीं गाय, गाय तो फायदा ही होगा, गाय पशु है, हाँ पर पशु है, उसको तो कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा है, कम से कम प्रसाद दे रहे हैं देवता का, अच्छा ही होगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, हाँ एक मिनट, एक एक करके, हाँ आप देवताओं के मालिक हैं, देवताओं के इंचार्ज हैं, जैसे होता है ना कि जैसे कुछ जैसे कई लेवल्स होता है, जैसे आप एक होता है कि टीच किसी कॉलेज में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उसके ऊपर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है ना, हेड ऑफ, लेकिन सबके ऊपर एक डायरेक्टर होता है, उसके ऊपर जो है ना चेयरमैन होता है, तो उसी तरह से असल बात बीच बीच का पोस्ट है, कुछ देवताओं को मिला के मतलब 40-50 देवताओं को मिला के एक इंचार्ज बना दिया जाता है, ये देवता इन सबके ग्रुप लीडर रहेंगे। हाँ देवों के देव महादेव को कहा गया है, लेकिन महादेव के भी देव है, किसको, महादेव को, महादेव उनको दिया गया है महादेव, लेकिन सर्वदेव नहीं, नहीं ऐसा नहीं। आप अगर पढ़ेंगे भगवान शिव स्वयं बताते हैं, पार्वती ने यह प्रश्न पूछा है, पद्म पुराण में इसका वर्णन है, पार्वती ने पूछा कि हे भगवान शिव जी से कि सबसे बड़ी पूजा किसकी है, तो स्पष्ट बताया भगवान ने कि आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना पर सारी आराधनाओं विष्णु की आराधना श्रेष्ठ। विष्णु और कृष्ण में अंतर यही है कि कृष्ण जब इस संसार में असुरों को मारने के लिए रहते हैं तो विष्णु बने, मारने का काम है विष्णु का। कृष्ण पहले सृष्टि के पहले रचना से पहले ही कृष्ण है, विष्णु बाद में जब रचना हो गई उसके अंदर कृष्ण आते हैं। एक मिनट, एक आदमी को प्रश्न दीजिए, बताइए मत। शंकर जी नहीं पहले नहीं आए हैं, इसलिए तो बता रहा हूँ, है ना। शंकर जी नहीं है, भगवद गीता का वर्णन तो किया ना, भगवान जब अपना विश्व रूप दिखाए तो उसमें उन्होंने शंकर जी भी थे उनके रूप में। भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया अर्जुन को ना, आप सब जानते हैं, सुना है। हाँ, तो उस विश्व रूप में अर्जुन ने शिव जी को भी देखा, ब्रह्मा जी को भी देखा। तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मा और शिव कृष्ण के अंदर स्थित हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है उनसे, ठीक है। तो कुछ लोग शिव की पूजा करना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए भी कुछ पुराण है ना, तो उसमें उनको भी प्रोत्साहन दिया गया। भगवान बता रहे हैं ना कि उनको भी डिस्करेज नहीं करता हूं मैं, उनके लिए भी एक पुराण बना दिया है ना। हाँ, राम और कृष्ण में अंतर नहीं है, व्यक्ति एक ही है लेकिन रोल अलग अलग है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, माया सबको पकड़ सकती है, भगवान ही केवल माया के परे हैं, ठीक है। शिव जी स्वयं माया से प्रभावित हो गए, शिव ब्रह्मा सब माया के बस में चलते हैं, कई बार आ जाते हैं, है ना। इसलिए शिव जी कभी तो बताया ना आपको, शिव जी जब परेशानी में भागने लगे तो भृगासुर ने परेशान कर दिया ना, क्या कि नहीं, तो फिर कहाँ गए सब, कृष्ण के पास गए, भगवान ने हेल्प किया उनको, है। भगवान जब कृष्ण इस संसार में आए तो उस समय भी भगवान शिव से उनका युद्ध हुआ था, उसने शिव जी को परास्त किया। कई लोग बोलते हैं कि भगवान राम ने शिव जी की पूजा की है ना, इसलिए शिव जी बड़े हुए, ऐसा कुछ ये नहीं है। पूजा से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता है ना, जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा का पैर धोया, इसका मतलब क्या सुदामा बड़े हो गए, नहीं, वो तो भाव है भगवान का, अपने भक्तों का सम्मान करते है ना। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बड़े हो गए, सुदामा बड़े हो गए, यशोदा के ने बांध दिया कृष्ण को, तो क्या यशोदा बड़ी हो गई, नहीं, ठीक है। कोई व्यक्ति को भगवान का ये भाव है कि अपने भक्तों को बड़ा पोजीशन देते हैं, लेकिन आप देखिए भगवान शिव जी हमेशा जप करते हैं राम राम राम, ये मंत्र का उनके पास भी माला है ना। तो माला क्यों है, कृष्ण के पास माला क्यों नहीं है, विष्णु के पास माला क्यों नहीं है, राम के पास माला क्यों नहीं है, शिव जी के पास माला है, ब्रह्मा के पास माला है, या तो किसी के पास माला है या किसी के पास भाला है। कृष्ण के पास माला भी नहीं है और भाला भी नहीं है, उनके हाथ में एक बांसुरी है ना। भगवान किसी को देखिए, कोई हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न थे, आनंद में रहते हैं, तो परम भगवान कृष्ण को मानना है। और बाकी जो शिव जी हैं या जो भी देवता हैं उनको भगवान ऐसा मौका देते हैं, इस संसार में जो है इस संसार में उनको पोस्ट दिया गया है ना। जैसे दुर्गा हैं तो वो जो है जेलर है ना, जैसे जेलर होता है ना कैदियों को का इंचार्ज होता है, तो उसी तरह से दुर्गा जी इंचार्ज हैं और उनके हस्बैंड माया देवी हैं दुर्गा, और शिव जी जो है वो उनके हस्बैंड है। तो इस हिसाब से शिव जो है सारे देवताओं के ऊपर माने जाते हैं। लेकिन जब समस्या आती है तो सिर की इशारे देता हूँ को ले के नमाज और सिर कहाँ जाते हैं, इसमें भी बस जाते हैं ना। हाँ, इसे समझना चाहिए ना आपको।
चाय
नहीं मिलेंगे हम,
नहीं।
हम लेते ही नहीं चाय
नहीं।
तो समझ में आया आपको? हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ, वो तो सागर में लेके गया था, वही तो इसलिए आप समझ नहीं रहे हो। वो जो समुद्र था ये समुद्र नहीं था जो पृथ्वी के ऊपर है, वो दूसरा वो तो सागर है। ये ब्रह्मांड जो है ना, तो ब्रह्मांड जो है उसका आधा जो भाग, आधा ब्रह्मांड जो है वो गर्भोदक साई विष्णु है, उसके पसीने से आधा ब्रह्मांड भरा हुआ है, उसको बोलते हैं गर्भोदक सागर। और उसी के ऊपर जो है अनंत शेष की सैया पे लेटे हुए गर्भोदक साई विष्णु, तो वो जो, और उनके नाभि से एक कमल का पुष्प निकलता है, उस कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मलोक। और उस नाभि का जो स्टेम होता है, तना होता है उस पुष्प का, कमल का, उसके ऊपर 14 प्लैनेटरी सिस्टम, 14 लोक भुवन जिसको बोलते हैं, 6 ऊपर 7 नीचे और बीच में पृथ्वी। नीचे कौन कौन है? तल, अतल, सुतल, बीतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। ऊपर कौन है? स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक। 6 ऊपर 7 नीचे, बीच में भूलोक, भूमंडल। हम लोग भूमंडल में हैं, भूमंडल में पृथ्वी नहीं आती है, पृथ्वी तो एक अंग, एक एक छोटा पार्ट है भूमंडल का। इसके अलावा और भी लोग इसमें द्वीप हैं, एक द्वीप है जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के अंदर एक सेक्शन है पृथ्वी। भूमंडल में और भी कई सारे द्वीप हैं, उसमें एक द्वीप है जम्बू द्वीप। इसीलिए किसी का नाम उच्चारण होता है मंत्र तो जम्बू द्वीप है, भारत खंडे इस तरह से बोलते हैं ना, तो एड्रेस बताया जाता है ना, कि विलेज प्लस पोस्ट डिस्ट्रिक्ट, समझ बात को। तो जब भी मंत्र किसी को संकल्प लेता है तो मंत्र में बताया जाता है उस देवता को कि किस व्यक्ति के लिए संकल्प हो रहा है, ये व्यक्ति इसका पुत्र है, इस देश में, इस द्वीप में, इस ना लोक पे, पूरा डिटेल में बताना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा भी उच्चारण तो कहीं और किसी और को मिल जाएगा उसका फल, समझ बात। इसलिए ये सारे जो है, तो मैं बता रहा था आपको कि क्या गर्भोदक सागर में, तो भगवान जो महाविष्णु है वो गर्भोदक साई विष्णु गर्भोदक सागर में है, तो पृथ्वी को उस ये जो सिस्टम है प्लेनेटरी सिस्टम, उसमें से निकाल दिया उसने, पृथ्वी को चुरा लिया, पृथ्वी को जम्बू द्वीप से उठा के ले गया और ले जाके गर्भोदक सागर में छुपा दिया। तो बताया जाता है कि एक्चुअली हुआ ये कि उसने इतने सारे पृथ्वी के अंदर स्वर्ण छुपा हुआ है, सोना, उसने इतना सोना निकाला पृथ्वी के अंदर से, इतना सोना निकाल दिया हिरण्यक्ष ने कि पृथ्वी इम्बैलेंस हो गया, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन जो पृथ्वी का वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, और पृथ्वी जो है वो अपने ऑर्बिट से निकल कर जा गिरी गर्भोदक सागर में, और वहां पे वो था, तो उसको निकालने के लिए भगवान ने बराह देव का अवतार लिया। सुकर रूप केशव धृत, सुकर रूप जय जगदीश, केशव ने धारण किया सुकर का रूप, किसने धारण किया, केशव ने धारण किया है सुकर का रूप, तो भगवान किस कृष्ण ने ही धारण किया वो रूप, तो केशव धृत सुकर रूप जय, बराह अवतार लिया और दोनों अपने टस्क पे पृथ्वी को ऊपर उठा के और आके फिर से ऑर्बिट में स्टेब्लिश कर दिया भगवान, इसीलिए उस दिन से पृथ्वी उनकी पत्नी हो गई। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने हिरण्यक्ष पीछे पड़ गया, तो कहाँ ले जा रहा है मैं छिपा, तो आके रोकने लगा तो उसको पिटाई किया फिर, इसीलिए उसका भाई गुस्सा हो गया था, मेरे भाई को मार दिया इन्होंने, क्लियर हुआ है? तो कौन सा सागर था? गर्भोदक सागर, ठीक है। तो बड़े बड़े सागर हैं, ये सागर तो कुछ भी नहीं है, इसी को देख के हम हताश हो जाते हैं। गर्भोदक सागर आप देखेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़े हैं, बहुत सागर भी है, गरोदक सागर के बाद कारण सागर जिसको बोलते हैं, महाविष्णु लिखते हैं बैतरणी नदी है, पता नहीं बैतरणी नदी वो दूसरा है, वो नरक में है, नरक जाने से पहले बैतरणी नदी, नरक लोग जो है गरोदक सागर के तुरंत ऊपर थोड़े से ऊपर में है, दक्षिण दिशा में स्थित है। हाँ बहुत सागर मतलब कारण सागर है, संसार सागर जो है जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जहाँ जन्म मृत्यु का चक्र है, उससे पार करने के लिए, ताकि भगवान के धाम जाने के लिए बोल रहे थे, वैकुंठ लोक ले जाने के लिए। और प्रश्न है किसी का? हाँ भगवान शिव का प्रसाद ले सकते हैं, अगर शुद्ध, वो भी ध्यान रखना है कि कौन किस भाव से अर्पित करता है। लेकिन अगर कोई भगवान शिव का प्रसाद पाके बोला सुंदर पत्नी मांग रहा है तो आपके अंदर भी वो भाव आ जाएगा, कहेंगे वो, तो इसीलिए बता रहा हूँ ना कि भाव नहीं पता है तो इसलिए मत लीजिए, या लीजिए तो किसी और को खिला दीजिए, ठीक है, पर उस सावधानी से कीजिए, नहीं तो उसका भाव, उसका भाव गड़बड़ हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा, उसे लेन देना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है लाइए दीजिए, है ना, समझ में आ रहा है। और देवी देवताओं का एक्चुअली बताते हैं, कई बार मांस चढ़ाते हैं लोग काली जी को, मांस चढ़ाते हैं, एक्चुअली काली जी तो वैष्णवी हैं, है ना, इसलिए उनका एक नाम है वैष्णवी देवी, है ना, उनका मंदिर भी है ना, वैष्णो देवी का मंदिर है ना, तो दुर्गा जी ही है जो वैष्णवी हैं, वो कभी मांस नहीं खाती हैं वो, है ना, तो इसलिए वो जो है उनको जो मांस चढ़ाते हैं वो भूत प्रेत खाते हैं, जो उनके साथ पिशाचिनी ये सब रहती है वो सब खाते हैं, तो इसीलिए उसमें उसी का चेतना रहता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए, है ना, और रजोगुण और तमोगुण से अच्छाई हो सकते हैं, हम वो प्रसाद खाएंगे तो, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए जितना बच सको। अब कई बार इमरजेंसी होता है, अपने ही माता पिता को बोलेंगे खाओ, आप नहीं खाएंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, तो उसमें थोड़ा देख सकते हैं सिचुएशन के अनुसार, ठीक है। तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से आप, है ना, अच्छा नहीं, तो जैसे शराब की नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आप जो है कॉन्सेंट्रेशन खो बैठेंगे, है ना, लूज कंट्रोल नहीं रहेगा आपको उसको खाने के बाद, है कि नहीं, तो भक्ति अगर करना है आध्यात्मिक जीवन का पालन, तो आपको सेल्फ कंट्रोल चाहिए, है कि नहीं, माला कर रहे ताकि कंट्रोल हो, और उसके बाद शराब पी लिए जाके, तो उसी तरह से प्याज लहसुन भी है ना, इससे क्या होता है कि आपकी इंद्रियां जो है उत्तेजित होती है ना, और उससे क्या होता है कि फिर हमारी भक्ति में बढ़ोतरी रुक सकती है, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन जो बहुत गंभीर है उनको तो कई सारी चीज़ें मना है खाने के लिए, आप लोग उतना नहीं यूज कर सकते, लेकिन हमारे कर्मचारियों के कई सारे नियम हैं, ये भी नहीं खाना है, वो भी, और सारी चीज़ें हैं, हालांकि वो वेजिटेरियन ही है, लेकिन वह आपके अंदर तमोगुण बढ़ा सकता है, रजोगुण का प्रभाव बढ़ा सकता है ना, बहुत ऑपुलेंट फूड अगर आप खाएंगे, राजसिक भोजन जो भगवान ने भगवद गीता में बताया है, तो उससे आपके अंदर रजगुण आ जाएगा, फिर आपको भक्ति नहीं हो पाएगा ठीक से, विषय खाई लो मलिन है मन, मलिन मन ना ही कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, फिर स्त्री का स्मरण आएगा आपके मन में, स्त्री का चिंतन होगा, कृष्ण का चिंतन नहीं होगा, इसीलिए आप देखते हैं ना माला करते ही नींद आने लगता है, क्यों बात है, क्योंकि हमारा मन जो है वो मलिन है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि हमारा अन्न शुद्ध नहीं है ना, जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए कई सारे नियम है, पर उतना आप लोग रिजिट नहीं कर सकते, पर कम से कम इतना तो प्याज लहसुन ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको करने से फायदा होगा, है ना, उसमें भी आप देख सकते हो कहाँ पे आप, है ना, कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती है जहाँ पे आप मना नहीं कर सकते, हाँ तो उसमें आप पूछ सकते हैं, उसके लिए कई ऑप्शन, जैसे हम कई बार ऐसा करते हैं, हमारे कॉलेज के नज़दीक में बेस बनाते हैं, उसमें जो हॉस्टल्स टाइटल फैसिलिटर, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरी तरह स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं वो तो बेस में रहते हैं, है ना। और बेस में जो है हम प्रसाद बनाते हैं उनके लिए, वहाँ पर खाना भी बनता है और कुक रहता है, वो बढ़िया से कुकिंग करता है, नौ प्याज लहसुन सात्विक आहार बनाते हैं, वो खा कर जाते हैं फिर कॉलेज स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ भी फ्यूचर हम बनाने का सोच रहे हैं प्लान। अब में कितने लोग तैयार हैं अगर बेस बनेगा खाने के लिए, ये देखिए, है ना। और उधर आप खा भी सकते हैं और ज़्यादा शुद्ध भोजन मिलेगा, सात्विक भोजन। आप लोग कभी आइए हमारे दिल्ली, अगर आएंगे तो आपको बीच बेस दिखाएंगे, नहीं गए थे ना तो बेस में नहीं गए थे आप लोग, है ना। बेस में रुके थे, हाँ बेस में रुके थे ना, तो वहाँ पे देखिए कितने स्टूडेंट्स रहते थे, है ना। निराचल धाम बेस में स्टूडेंट्स रहते थे, वो सब रहते हैं वहीं पे, प्रसाद पाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, स्टडीज करते हैं, फिर आते हैं शाम में, है ना। सुबह सुबह उठते हैं 4 बजे, सुबह सुबह मंगल आरती होती है बेस में, सब मंदिर में जैसे प्रोग्राम, सुबह दो तीन घंटे माला करते हैं बैठ के, सुबह 7 बजे तक प्रोग्राम होता है, उसके बाद पढ़ाई करते हैं दिन में शाम तक, है ना। तो इस तरह का फैसिलिटी यहाँ पे भी बना सकते हैं लोग, अगर आप लोग चाहें तो, है ना। तो ये वहाँ पे आपको पूरा फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ पे आप अच्छा से भक्ति कर पाओगे, नियमों का पालन कर पाएंगे, है ना।
एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसे हमारा भी सेमेस्टर ओवर हो जाएगा,
हाँ,
तो हम ये ना हमारा ऑलमोस्ट सबका हो रहा है कि हम हॉस्टल जो भी आ रहे हैं डिवोटीज हैं,
तो अगर आप लोग तैयार हैं छोड़ने के लिए तो हम लोग बाहर ले सकते हैं, है ना। आपकी तामर किस पर उसे डिस्कस कीजिए ना, या आपको डिस्कस करेंगे, आपको इस टॉपिक पे बेस खोलने के बारे में चर्चा करेंगे। ये सस्ता भी पड़ेगा और भक्ति के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक इन्वायरमेंट रहेगा जहाँ पे अच्छे लोग रहेंगे एक साथ, और उसमें बेस में हमारा बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन वहाँ पे आप जो है इधर उधर नहीं कर सकते, है ना। जब पढ़ने का टाइम है तो आपको पढ़ना पड़ेगा बैठ के, जैसे बेस में हमारा 7 बजे से लेकर 9 बजे तक शाम में स्ट्रिक्टली आपको पढ़ना है बैठ के, एक साथ सब बैठते हैं पढ़ते हैं, अटेंडेंस बनेगा। और उसमें अगर आप गायब हो गए या मोबाइल पे बात करेंगे आपको बेस से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि आपके बेस में आके पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा बेस में नाम बदनाम हो जाएगा, क्योंकि देखो बेस में क्या क्या कर रहे हैं लोग, कुछ पढ़ते नहीं है, इसलिए बेस में बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स रहते हैं, आप वहाँ पे लापरवाही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके फायदे के लिए होता है, है ना। तो आप सब इसके लिए कर सकते हैं, ओके। तो उसमें आपको पूरा फॉलो हो जाएगा, सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, हाँ शिव जी को बुलाया गया, क्योंकि शिव जी को बुलाया गया था वहां पर पीने के लिए, क्योंकि कोई देवता तैयार नहीं थे। शिव जी बड़े दयालु हैं, है ना। शिव जी दयालु, शिव जी जो है वो देवता नहीं है एक्चुअली, शिव जी देवता से ऊपर और विष्णु से नीचे बीच में है, ये बीच का पोजीशन है उनका, देवताओं से ऊपर और विष्णु से नीचे, इसलिए उनका स्पेशल पोजीशन है। और भगवान शिव इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो भूत प्रेतों को शरण देते हैं, जिसको सब रिजेक्ट करते हैं, कोई शरण नहीं देता, और भूत प्रेतों को शरण देते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते भी हैं, हाँ, इसलिए भूतनाथ बहुत दयालु हैं, असुरों को भी कृपा देते हैं। तो शिव जी जो हैं वो हमेशा परोपकार के बारे में सोचते हैं, देवता लोग ऐसे नहीं है, देवता लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, कितना कमीशन मुझे मिल रहा है, लेकिन शिव जी ऐसे नहीं है। शिव जी जो है वो वैष्णव है, दयालु है, करुणा है उनके अंदर जीवों के प्रति। तो बीच जो है, जब समुद्र मंथन जब हो रहा था तो सारे देवता थे वहां पर मौजूद थे, केवल शिव जी नहीं थे। तो प्रश्न था शिव जी क्यों नहीं थे और बाकी देवता क्यों थे? तो बाकी देवता थे क्योंकि उनको कुछ वहां पर मिलने वाला था, कमीशन क्या था, अमृत निकलने वाला था, अमृत निकलने वाला था, इसलिए काफी इंटरेस्टिंग था, इसलिए सब मौजूद थे। लेकिन शिव जी ने मौजूद क्यों? क्योंकि शिव जी को अमृत से मतलब, वो हमेशा हरे कृष्णा कर रहे हैं अपना, वही अमृत है उनके लिए, है ना, उनको अलग से अमृत की जरूरत नहीं है। इसलिए कुंभ मेला में जो है अमृत गिरा, इसीलिए करोड़ों लोग आते हैं वहां पे, है कि नहीं? लेकिन मैं इस बार नहीं गया था। यहाँ हमारे डिवोटी कई बार बड़े परेशान थे जाने के, मैं बोला जरूरत नहीं है जाने का, उस अमृत से क्या होगा, हम ऑलरेडी हमारे पास नाम अमृत है, नाम अमृत, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, ये वास्तविक अमृत है, ये दिस इज रियल नेक्टर है। तो शिव जी वो अमृत का आस्वादन कर रहे थे है? तो सबसे पहले क्या निकला, गर्जन शुरू हुआ, सबसे पहले विष निकला, तो सब देवता लोग जलने लगे, विष में परेशान, मुझे नहीं चाहिए अमृत, हम भागे, सब भाग चले, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो सब लोगों ने प्रार्थना किया, भगवान विष्णु ने वो रवि मंथन करा रहे थे, कौन करा रहा था, कृष्णा, कृष्णा समुद्र मंथन करा रहे थे, इंचार्ज कृष्णा थे। तब कृष्णा ने बोला कि आप सब हैं शिव जी को बुलाइए, वो आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो देवताओं ने शिव जी को बुलाया, तो शिव जी जो है बोले कि मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा, मेरे को इतनी शक्ति नहीं है। तो भगवान ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, आप पीजिए, है ना, मैं शक्ति दूंगा आपको। तो शिव जी ने पिया और उन्होंने विष को गले में ही रोक दिया नीचे। हाँ, संत ऐसे ही होते हैं, संत संत क्या करते हैं, संसार में रहते हैं और संसारिक चीजों को के साथ रहते हैं, उनको एक्सेप्ट भी करते हैं लेकिन उसको अंदर नहीं जाने देते, यहीं तक रोक देते हैं, समझे बात को, इसीलिए वो बचे रहते हैं, इसलिए संसार का जहर उनको नष्ट नहीं कर सकता, उनकी चेतना हमेशा भगवान के चरणों में लगी रहती है, वो अंदर चला गया तो चेतना दूषित हो जाएगी। तो शिव जी ने उसको यहीं तक रोक दिया, है ना, इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ, और पिया नहीं, और सांप लपेट लिया ठंडी के लिए। तो इसलिए शिव जी को और वो शक्ति जो है भगवान ने दिया, तो शिव जी को थोड़ा अभिमान हो गया, क्या हो गया, अभिमान हो गया, अब जहर पी के चले गए, जहर पी के जाके फिर से हरे कृष्णा शुरू कर दिया। तो बाद में शिव देवताओं ने बताया शिव जी को जाके कि, और पीने के बाद थोड़ा अहंकार आ गया शिव जी, है ना, कि मैं देखो मैंने जहर पी लिया, तो जब भगवान ने उनको थोड़ा लेसन देना सोचा, अहंकार लगता है आ रहा है शिव जी, तो उन्होंने देवताओं को, देवता लोग गए शिव जी से बोले, पता है शिव जी महादेव कि भगवान ने एक अद्भुत अवतार लिया। शिव जी बोले अच्छा कौन सा अवतार था, बोले मोहिनी अवतार था। क्यों मोहिनी अवतार लिया था, हमने तो असुर छीन के भाग गए, पीस निकला तो कोई नहीं गया, जैसे ही अमृत निकला सारे राक्षस बलि महाराज सहित छीन गए, देवताओं को लात मार के भगा के लेके चल दिए, और एक असुर पकड़ रहा है, फिर दूसरा जाके पीछे, तू नहीं पिएगा मैं पीऊंगा, एक दूसरे को छीन रहे हैं, और देवता लोग परेशान, क्या करूं अमृत तो चला गया हाथ से। तो भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने बोला आप लोग परेशान मत होइए, मैं इनसे लेके आता हूँ। तो भगवान ने मोहिनी मूर्ति अवतार धारण किया और मोहिनी मूर्ति ने असुरों को मोहित कर दिया। हाँ, और बोली कि आप इधर खड़े लाइन में खड़े हो जाइए और इधर देवता लोग खड़े हो जाएंगे और मैं बारी बारी से दोनों को बुलाऊंगा, आपको विश्वास है ना मेरे ऊपर। देवताओं ने कहा हाँ सुंदरी, आपके ऊपर पूरा विश्वास है हमें, है ना। और भगवान जो उनको नृत्य करके उनको लुभा रहे थे और इधर पिलाते जा रहे थे देवताओं को। तो देवताओं को जो पिला रहे थे तो उसमें से एक असुर जो था जिसका नाम था राहु, राहु बड़ा दिमाग था, उसको समझ में आएगा ये तो गड़बड़ है कुछ। हाँ, तो वो सोचा कि ये तो लगता है कि भगवान है और ये ठग रहे हैं हमें, तो दिमाग था, उसने देवता का वेश धारण करके लाइन में खड़ा हो गए देवताओं के। और जब लाइन में खड़ा होगा देवताओं के, तो सूर्य भगवान उसके बगल में थे, तो उन्होंने जब उसको दे दिया पीस, दे दिया अमृत, दे दिया उसके हाथ में, राहु को तो सूर्यदेव तुरंत समझ गए कि ये उन्होंने भगवान को बता दिया है कि ये तो असुर है, राहु है ये। तो जैसे ही उसने गले में पिया, भगवान ने उसको चक्र से उसका गला काट दिया तो गला जो है वो जीवित रहा और पूरा नीचे का मर गया। वही राहु जो है वो हमेशा सूर्य देव से उसको दुश्मनी हो, हमेशा उनका ग्रहण रहता है। तो भगवान जो है इस तरह से जब शिव जी ने सुना कि बहुत सुंदर था मोहिनी अवतार, तो उनको सोचा कि मैं सारे अवतार देखे, भगवान के ये अवतार नहीं देखा। बड़े कोसने लगे अपने आप को कि अवतार लिया भगवान ने, उनका दर्शन नहीं कर पाया मैं। तो गए भगवान के पास स्पेशली इसके लिए कि मैं आपका वो रूप का दर्शन करना चाहता हूँ मोहिनी वाला। भगवान बोले क्यों करना चाहते हैं, मत कीजिए, है ना, वो तो असुरों के लिए था, है ना। बोले नहीं नहीं, बोले कि आप परेशान, आप जो है ना आपका नष्ट हो जाएगा ब्रह्मचर्य पर अगर आप देखेंगे तो। शिव जी बोले नहीं, मैं अभी जहर पी के आया हूँ, क्या बात करे, जो जहर पचा सकता है। भगवान बोले सोच लीजिए एक बार। बोले नहीं नहीं, सोचना क्या है इसमें, आप दिखाई दीजिए आप। तो भगवान ने तुरंत अपना मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप देख और शिव जी बिल्कुल उसमें एकदम आकर्षित हो गए, काम से काम उनके अंदर भर गया पूरा। पार्वती बगल में थी, उनके बेटे कार्तिकेय और गणेश बगल में थे, सबके सामने ही तड़ पड़े पकड़ने के लिए, गले लगाने के लिए, है ना। भाग रहे भगवान, मोहिनी मूर्ति भाग रही है, ये शिव जी जबरदस्ती है ना, है ना, पकड़ के कपड़ा एकदम, है ना, और उनका वीर पतन हो गया, फॉल डाउन हो गया शिव जी का। शिव जी का जब फॉल डाउन हो गया तो भगवान उनके हाथों से छिटक के निकल गए और फिर मुस्कुराने लगे अपने रूप में और यूं रूप में आ गए, है ना। और बोले शिव जी बड़े लज्जित, ये क्या हो गया, पहली बार शिव जी है, पहली बार आकर्षित थी। बताया था कि शिव जी इतने कंट्रोल्ड हैं कि पार्वती जो है वो उनको देवताओं ने भेजा, उनका लिंग जो स्पर्श करती है फिर भी एजिटेट नहीं हुए शिव जी, इतने उनके अंदर स्थिरता है। और वो शिव जी जो है उनको मोहिनी मूर्ति ने मोहित कर दिया। माया देवी मोहित नहीं कर सकी शिव जी को, लेकिन भगवान ने उनको मोहित कर दिया, उत्तेजित कर दिया। तो इसलिए भगवान शिव जो उस दिन से और फिर मुस्कुराने लगे शिव जी। भगवान बोले क्यों मुस्कुरा क्यों रहे, बोले कि आज मुझे समझ आया मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों, क्योंकि इसलिए दुख नहीं है क्योंकि मुझे गर्व है कि मेरे स्वामी जो हैं वो मुझसे महान है, इसका मुझे गर्व है कि मैं जिनकी आराधना करता हूँ वो इतने महान हैं, वो मुझे भी आकर्षित कर सकते हैं। तो ये घटना आती है और आप देखिए कि ये केवल केवल कृष्ण ही है जो कि माया से आकर्षित नहीं होते, माया के बीच में रहते हैं लेकिन आकर्षित नहीं होते, लेकिन बाकी सब माया के बस में। सारे देवता अपनी इच्छा से लीला करेंगे, अपनी इच्छा से, है ना, किसी के प्रति आकर्षित हो जाएंगे लेकिन अपनी इच्छा से, लेकिन कोई जबरदस्ती उनको आकर्षित नहीं कर सकता। एनी अदर क्वेश्चन, टाइम हो गया
सवा आठ,
एनी अदर क्वेश्चन, काफी कल भी क्वेश्चन आंसर होगा। ओके लास्ट क्वेश्चन, आप लोग और भी क्वेश्चन हुआ तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कल एक सेशन है क्वेश्चन आंसर का उसमें। यस, हम लोग नहीं करते हैं श्री गणेश का पूजा, लेकिन श्री गणेश जी जो है उनको वो जिम्मेदारी दी गई है, हर बार कृष्ण को डिस्टर्ब ना किया जाए, इसलिए भगवान ने ये डिपार्टमेंट गणेश जी को दे दिया कि आप संभालते रहिए, है ना, क्योंकि भगवान कृष्ण को कई काम, मैंने गोपियों से लीला करना है, ब्रज में लीला करना है ना, हर व्यक्ति हर जैसे ही बांसुरी कोई शुभ काम शुरू कर दिया, बांसुरी बजाना शुरू किया तो डिस्टर्ब होगा ना उनको, इसलिए गणेश जी को बोला कि आप ही ये काम देखिए, आपको जिम्मेदारी दे देता हूँ, समझ रहे बात को, तो गणेश जी को जिम्मेदारी दे दिया गया इसके लिए। यस, समाप्त क्वेश्चन, ओके, थैंक यू, विल डू 5 मिनट्स कीर्तन।